यूनिट एक शिक्षा प्रबंधन का प्रत्यय पाठ दो, इसके अंतर्गत नियोजन प्रशासन व्यवस्था पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं, उनकी पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से कर लेता था, परंतु मानवीय विकास के साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है, जिसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। आज हमारे चारों ओर विविध प्रकार के संगठन हैं। यह संगठन औपचारिक एवं अनौपचारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक, राजनैतिक आदि हैं। संगठन प्रक्रिया व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन संगठनों को निर्देशित, समन्वित तथा एकीकृत करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का सरल शब्दों में अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट टैक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ है व्यक्तियों से कार्य लेना है। प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन एक व्यापक तथा जटिल प्रत्यय है। इसकी परिभाषा देना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। यहाँ प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। हरोल्ड कीजन के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपुल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, हरोल्ड कीजन के अनुसार है। प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टुवर्ड ऑब्जेक्टिव्स एकम्प्लीशमेंट। प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है। मैनेजमेंट इज दैट इज व्हाट अ मैनेजर डज। प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं अपितु मनुष्यों का विकास करता है। लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बनाने का कार्य है, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके, ऐसा कहा है रॉबर्ट अल्वानेस ने। मैनेजमेंट इज द वर्क ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट इन विच पीपुल कैन अचीव हिज गोल इफिशियंसली, रॉबर्ट अल्वानेस। प्रबंधन ज्ञान की एक शाखा अर्थात अनुशासन किया जाने वाला एक कार्य है। प्रबंधन इस ज्ञान का कार्यों के संपादन में प्रयोग करते हैं और विशेष कार्यों को पूरा करते हैं, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार है। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, अ डिसिप्लिन, अ टास्क टू बी डन एंड मैनेजर्स प्रैक्टिस दिस डिसिप्लिन, कैरी आउट द फंक्शंस एंड कंप्लीट दिस टास्क, पीटर एफ ड्रकर। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से पूरा करते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार है ये। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नॉलेज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल वे, एफ डब्ल्यू टेलर। प्रबंधन की व्यावहारिक परिभाषा आर एस डेवर ने की है। इसमें प्रबंधन के स्वरूप तथा संपादन की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने का नियोजन करना, संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देशित देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना है, आर एस डेवर के अनुसार है। मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इवेलुएटिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग विद व्यू टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनली इन्वॉल्विंग टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग फॉर फ्यूचर, RS डेवर के अनुसार है। इसी प्रकार से जेम्स लुंडे ने प्रबंधन की परिभाषा दी है, प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपली एन आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग द टास्क एंड एफर्ट ऑफ अदर प्रोसेस टू रियलाइज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आर एस डेवर तथा जेम्स लुंडे की परिभाषाओं को एक आकृति की सहायता से भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रबंधन के अर्थ को समझने में सरलता होती है। प्रबंधन का प्रारूप, इसमें पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा प्रशासन, चौथा निर्देशन, पांचवा नियंत्रण, इसे ही प्रबंधन कहते हैं। इसे एक सर्कल के द्वारा दर्शाया गया है। इस आकृति से विदित होता है कि प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया तथा कार्य है, जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन तथा नियंत्रण के कार्य होते हैं। प्रबंधन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इन परिभाषाओं की समीक्षा से प्रबंधन की अधोलिखित विशेषताओं का बोध होता है, अर्थात प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। दूसरा, इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप में कार्य कराया जाता है, सामूहिक क्रियाओं को बढ़ा दिया जाता है। तीसरा, प्रबंधन को कार्य करने की ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन माना जाता है। चौथा, प्रबंधन में मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। पांचवा, प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बनाने का कार्य करता है। छठवां, प्रबंधन को मानव विकास की प्रक्रिया भी मानते हैं। सातवां, प्रबंधन में निम्नांकित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें अ, नियोजन की प्रक्रिया, ब, उद्देश्य तथा प्रतिपादन, स, व्यवस्था करना, द, निर्देशन करना, य, नियुक्तियां करना, र, संपादन तथा समन्वय करना, ल, मूल्यांकन तथा नियंत्रण करना तथा सुधार एवं विकास करना, व, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। इन सभी क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की प्रकृति बदलती रहती है। पहले प्रबंधन तथा स्वामित्व को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे, परंतु आज तकनीकी एवं औद्योगिक युग में इनके अर्थ एवं प्रकृति भिन्न हैं। प्रबंधन की प्रकृति इस प्रकार है। पहला, प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान है और एक अध्ययन का क्षेत्र भी है। दूसरा, प्रबंधन एक विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र भी है। तीसरा, प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चौथा, प्रबंधन व्यक्तियों के संगठित समूह से कार्य कराने का एक तंत्र है। पांचवा, प्रबंधन एक व्यवसाय पेशा है, इसकी अपनी आचार संहिता है। छठवा, प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य है। प्रबंधन एवं प्रणाली, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। मानवीय क्रियाओं के संचालन हेतु प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का संबंध प्रणाली से होता है। मनुष्य प्रणाली तथा उप प्रणालियों का विकास करता है। प्रबंधन की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता प्रणाली पर आधारित होती है। मानव द्वारा जिन प्रणालियों का विकास किया गया है, उनमें कोई प्रणाली पूर्ण नहीं है। प्रत्येक में सुधार एवं विकास की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को एक कला तथा विज्ञान मानते हैं। प्रबंधन की प्रणाली का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इसमें पृष्ठ पोषण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और प्रणाली के स्वरूप का विश्लेषण भी किया जाता है, जिससे अनुदेशनात्मक अभिकल्प यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की संज्ञा दी जाती है। इस अध्ययन में इसी प्रत्यय के तत्वों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है या शिक्षा तकनीकी की प्रमुख पाठ्य वस्तु है। टी आर रियोर्डन 1971 के अनुसार, प्रबंधन का संबंध विविध प्रकार के वैकल्पिक नियोजनों तथा प्रस्तावों में से प्रभावी नियोजन का चयन करना है जिससे अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और निहित अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। प्रबंधन में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अव्यूहों का भी चयन किया जाता है। मैनेजमेंट रेफर्स टू कॉन्शियस प्रेफरेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स एंड प्रपोजल्स एंड फर्दर द मोर दैट सच चॉइस इन्वॉल्व पर्पसफुल कमिटमेंट टू रिकॉग्नाइज एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज स्ट्रेटेजीज टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स। टीआर रियोर्डन 1971। शिक्षण के अंतर्गत व्यापक रूप से अनुदेशन की प्रारूप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक अभियंत्रण यानी कि एजुकेशनल इंजीनियरिंग के विकास में अनुदेशन प्रणाली को वैज्ञानिक रूप दिया जाता है और शिक्षण को कला की अपेक्षा विज्ञान अधिक माना है। शैक्षिक तकनीकी की यह धारणा है कि शिक्षण एक कला नहीं है अपितु एक विज्ञान है। शिक्षक जन्मजात से नहीं होते अपितु प्रशिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली शिक्षकों को तैयार करती हैं। ग्लेसर 1968 का कथन है कि शैक्षिक तकनीकी की यह विशेषता है कि अनुदेशन के प्रारूप की सहायता से व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञ इस क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं कि इस किस स्तर तक व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। एल कार्टर 1966 में शोध कार्यों के निष्कर्षों में यह पाया कि अनुदेशन के प्रारूप का प्रयोग एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह की व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। ग्लेसर ने अनुदेशन के प्रारूप के कार्यों का उल्लेख किया है। शिक्षा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। यह प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित होती है कि यदि इनमें किसी प्रकार शिक्षा की अवस्था हुई तो यह दो अवधारणा में परिवर्तन से है। पहला, शिक्षा मानव विकास की सशक्त प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्र विकास एवं जनशक्ति नियोजन का आधार बन गई है। दूसरा, यह एक मानवीय व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही है। यह व्यवसाय अन्य व्यवसायों से भिन्न है। इसमें शिक्षक शिक्षा के द्वारा मानव विकास के लिए किए गए श्रम का मूल्य लेता है। यह व्यवसाय एक मिशन यानी कि सेवा कार्य के रूप में है जिसका संपूर्ण लाभ समाज तथा राष्ट्र को मिलता है। अन्य व्यवसायों में लाभ व्यक्ति का संस्था को मिलता है और कर्मचारियों को केवल सेवा मूल्य प्राप्त होता है। शिक्षण शिक्षण व्यवसाय टीचिंग प्रोफेशनल में प्रबंध का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा को हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पहला, शिक्षण एक व्यवसाय है। हेनरी के शब्दों में व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उस नियमित क्रय विक्रय हस्तांतरण अथवा विनिमय को कहते हैं जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला है, इस परिभाषा के अनुसार शिक्षा एक व्यवसाय है। इसमें शिक्षक अपने ज्ञान तथा कौशल की सेवाएं धन के बदले छात्रों को देता है। छात्र शिक्षण द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करके अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं। व्यवसाय में क्रय विक्रय विनिमय सेवाओं का लेन देन लाभ प्रयोजन तथा प्रतिफल की अनिश्चितता जोखिम एवं विनिमय में निरंतर के लक्षण पाए जाते हैं। उद्योग तथा व्यवसाय में लाभ उत्पादक को मिलता है। शिक्षा में उक्त सभी लक्षण पाए जाते हैं किंतु इसमें जोखिम कम है। इसका लाभ व्यक्ति तथा समाज को मिलता है। दूसरा, शिक्षा एक प्रबंधन है। इसमें शिक्षा यद्यपि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि प्रबंधन निरंकुश है तो शिक्षा की प्रक्रिया में अवरोध आएंगे। यदि वह अधिनायकवादी है तो एक व्यक्ति या संस्था का वर्चस्व रहेगा। यदि मुक्त है तो अराजकता की संभावना बढ़ेगी। इसलिए शिक्षा उद्योग अर्थात शिक्षा संस्थाओं की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। ओलिवर सेल्डन के शब्दों में प्रबंधन उद्योग यानी कि विद्यालय तथा शिक्षा की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन की शक्ति देता है, संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है। इसी प्रकार थियो हेमेन ने लिखा है, प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में, प्रबंधन एक उच्च स्तरीय प्रबंधन समूह के रूप में तथा प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रबंधन एक कार्यकारी समूह है। यह समूह कार्य का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय करता है, इसलिए वह प्रबंधक यानी कि प्रशासक कहलाता है। प्रबंधक या प्रशासक, प्रबंधन या प्रशासन छह तत्वों, पहला मानव, दूसरा मशीन, तीसरा माल, चौथा मुद्रा बाजार, पांचवा प्रबंधन, छठवा संगठन का समन्वय करता है। पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधक प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक तथा जीवनदायी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। विद्यालयी प्रबंधन में मानव यानी कि शिक्षक छात्र, मशीन यानी कि विद्यालयी उपकरण, माल यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया तथा निष्पत्ति, मुद्रा बाजार यानी कि शुल्क अर्थव्यवस्था तथा मानव शक्ति नियोजन, प्रबंधन यानी कि समन्वय तथा संगठन यानी कि प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, साधन आदि निहित हैं। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंधन एक विशेष क्रिया है। मानव समूह तथा संस्थाओं के संचालन के लिए अर्थात विद्यालय के कर्मियों तथा विद्यालयी संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में व्यवस्था की यह प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। प्रशासन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पद के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए प्रबंधन तथा प्रशासन को समानार्थी कहा जाता है। प्रचलित अवस्था में प्रबंधन शब्द उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। शिक्षा प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला, किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मनुष्य और माल को नियंत्रित करने के लिए चालू आर्थिक सिद्धांत को प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, कुंटज के अनुसार औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबंधन है। व्यक्तियों से काम लेने को प्रबंधन कहते हैं। तीसरा, स्टेम लेवेंस के अनुसार प्रबंधन सामान्य रूप से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिसमें पूर्ण निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। चौथा, पीटरसन तथा फ्लोमैन के अनुसार प्रबंधन का आशय उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशेष मानवीय समूह के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। व्यक्तियों से काम लेने से विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षा प्रबंधन की सामान्य विशेषताएं, जनरल फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सन 1970 से शिक्षा प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। यह सूत्रपात इस प्रकार है। पहला, शिक्षा प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा, सैद्धांतिक स्तर पर नवीन शब्दावली का निर्माण हो रहा है। तीसरा, शैक्षिक प्रशासन के लिए शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक संगठन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, शैक्षिक प्रबंधन ज्ञान की नवीन शाखा के रूप में विकसित हो रहा है। पांचवा, वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में जिसे प्रबंधन कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उसे शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। इस दृष्टि से थिया हेमन ने प्रबंधन की अवधारणा इस परिभाषा से स्पष्ट की है। प्रबंधन के तीन अर्थ हैं। प्रबंधन उच्च स्तरीय प्रबंधकों का एक समूह है। प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंधन काम लेने की कला है। शिक्षा प्रबंधन की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रबंधन उत्पाद एवं आर्थिक संसाधन है। आर्थिक क्रियाओं में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा विनिमय प्रमुख घटक हैं। ये सभी घटक स्वतंत्र होते हुए भी प्रबंधन के अधीन हैं। प्रबंधन के साधनों के अभाव में उत्पत्ति के सभी साधन अपूर्ण एवं निष्क्रिय हैं। दूसरा, प्रबंधन एक अधिकार व्यवस्था है। इसमें किसी भी क्षेत्र में प्रबंधन अधिकार के रूप में प्रयुक्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन प्रबंधक तथा प्रबंधित दो वर्ग होते हैं। प्रबंधक वर्ग के अधिकार अधिक होते हैं और वे अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। प्रबंधक भी उच्च माध्यम पर्यवेक्षीय स्तर के होते हैं। सभी के अपने पदों के अनुरूप अधिकार होते हैं तथा भूमिकाएं होती हैं। ये अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करते हैं, नियंत्रण, समन्वय तथा नेतृत्व करते हैं। प्रबंधन एक लोक समूह है। प्रबंधन की अवधारणाओं में यह है कि यह एक लक्ष्य समूह है। विद्यालय में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, अन्य कर्मचारी होते हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में प्रबंधन करते हैं। आधुनिक प्रबंधन शास्त्र में तीन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला पैतृक अथवा पारिवारिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा पेशेवर। पैतृक प्रबंधन वंशानुक्रम तथा परिवार की परंपराओं के अनुसार चलता है। औद्योगिक घरानों में इसी प्रकार का प्रबंधन पाया जाता है। राजनीतिक प्रबंधन सरकार उपक्रमों यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में पाया जाता है। इसमें सत्तारूढ़ दल अपने हितैषियों की नियुक्तियां करते हैं। पेशेवर प्रबंधन में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति संस्थाओं का प्रबंधन करता है। चौथा, शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न साधनों में समन्वय करता है तथा एकीकरण के द्वारा वह शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाता है। HL शिष्य के शब्दों में प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया, संगठन प्रक्रिया, निर्देशन तथा नियंत्रण के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का संसाधन संयोजन है। पांचवा, शैक्षिक प्रबंधन एक समूहवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन में एक व्यक्ति या संस्था निहित नहीं होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में वह समूह निहित होते हैं जो अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह एक विज्ञान है और साथ ही यह एक प्रक्रिया भी है। प्रबंधन के अधीनस्थों में यह एक विज्ञान है और साथ ही यह एक प्रक्रिया भी है। प्रबंधन में अधीनस्थों से काम कराया जाता है। छठवां, प्रबंधन मूल रूप से व्यवहारिक क्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन मूल रूप से वह क्रिया है जो कार्य का संपादन करती है। इसका संबंध मानवीय संबंध, भौतिक संसाधन तथा निष्पत्ति से होता है। प्रबंधन व्यक्तियों से काम लेने की क्रिया है। सातवां, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रबंधन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। बच्चों की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थान, सामान, कर्मचारियों, उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। इन सबका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना है। आठवां, प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। लॉरेंस एब्फ्ले के अनुसार प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन वास्तव में कर्मचारी प्रशासन है। विद्यालयों में इसलिए अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जो विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का सृजन करते हैं। नौवां, प्रबंधन का दायित्व काम कराना है। शैक्षिक प्रबंधन स्वयं कार्य न करके कार्य कराता है। प्रधानाचार्य स्वयं बहुत कम पढ़ाते हैं किंतु प्रत्येक शिक्षक से कार्य लेते हैं और गैर शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा शैक्षिक सुविधाएं जुटाने एवं वातावरण का निर्माण कराने में सहयोग लेते हैं। दसवां, शैक्षिक प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। इसमें शैक्षिक प्रबंधन कोई दिखाई देने वाला तत्व नहीं है, यह तो कौशल है जिसे उसके परिणाम से जाना जाता है। किसी विद्यालय में लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए इसलिए लालायित रहते हैं कि वहाँ का परिणाम उत्तम रहता है। परिणाम का उत्तम रहना उत्तम प्रबंधन कौशल पर निर्भर करता है। ग्यारहवां, प्रबंधन तथा स्वामित्व दो पृथक अवधारणाएं हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधन तथा स्वामित्व दोनों पृथक धारणाएं हैं। आजकल बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां विद्यालयों की स्थापना कर रही हैं। वे इन विद्यालयों की स्वामिनी हैं। विद्यालय से होने वाले हानि लाभ के प्रति वे जोखिम उठाती हैं। परंतु ये विद्यालय भली प्रकार से तभी उत्तम प्रकार कार्य करते हैं जब इनके प्रबंधक अच्छे होते हैं। प्रबंधक की उत्तमता ही विद्यालयों को गतिशीलता प्रदान करती है। बारहवां, प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंधन किसी भी कार्य को समुचित दिशा देने में सदा सहयोगी रहा है और यह सार्वभौम यानी कि यूनिवर्सल है। नियोजन, संगठन, नियंत्रण तथा निर्देशन आदि सभी सार्वभौमिक प्रकृति के कार्य हैं। सभी प्रकार की संस्थाओं में ये कार्यशील हैं। प्रबंधन का कार्य प्रबंधन को करना पड़ता है। शिक्षा प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। प्रीच के शब्दों में प्रबंधन उपक्रम के कार्यों के प्रभावपूर्ण ढंग से नियोजित व नियमित करने का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में नियोजनानुसार चलते रहने के लिए उपयुक्त कार्य विधि तैयार करना, उसे बनाए रखना व और उपक्रम की संरचना करने वाले तथा उसके कार्यक्रमों को संपन्न करने वाले कर्मचारियों का मार्ग निर्देशन, संगठन तथा निरीक्षण निहित है। अतः स्पष्ट है कि प्रशासन तथा प्रबंधन, निष्पादन तथा उत्तरदायित्व सभी कार्यों में अंतर पाया जाता है। शिक्षा प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है। इसके अंतर्गत प्रबंधक नेतृत्व प्रदान करता है। नेता पैदा होता है, बनाए नहीं जाते। उनके वंशानुगत प्रभाव उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। दूसरा, प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत प्रबंधन केवल प्रक्रिया ही नहीं है, यह सामाजिक विज्ञान के रूप में आया है। यह कार्यकरण प्रत्येक व्यवसाय में इन तथ्यों का पाना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक व्यवसाय में संगठित ज्ञान तथा विशेषज्ञ ज्ञान का अस्तित्व होता है। दूसरा, सिद्धांतों के औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। तीसरा, प्रबंधन व्यवसाय में प्रतिनिधि संस्था विद्यमान होती है। चौथा, व्यवसाय के सदस्यों की सामान्य आचार संहिता होती है। पांचवा, व्यवसाय में सेवा की प्रकृति तथा मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक की व्यवस्था होती है। पांचवा, प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है। इसके अंतर्गत एच ए साइमन के शब्दों में प्रबंधन अर्थव्यवस्था का केवल एक सामान्य अंग मात्र ही नहीं है, अपितु उसका निर्माता भी है। जिस सीमा तक वह आर्थिक परिस्थितियों को नियंत्रित करता है और सतत प्रयत्नों से उन परिस्थितियों को बदलता है, उसी सीमा तक वह अच्छा प्रबंध करता है। छठवां, प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत जीवन तथा समाज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रबंधन की आवश्यकता न हो। सामाजिक कुशलता के निर्माण में प्रबंधन को एक सार्वभौम प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। शिक्षा प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें देश की आवश्यकता, संसाधन, मानव शक्ति, नियोजन आदि निहित होते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए हेनरी फेयोल ने कहा है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। टेलर के शब्दों में, वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल निगमों के कार्यों तक लागू होते हैं। इस दृष्टि से शैक्षिक प्रबंधन के 9 क्षेत्र हैं। पहला, उत्पादन प्रबंधन। इसके अंतर्गत उत्तम शैक्षिक उपलब्धि को दृष्टिगत रखा जाता है। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। तीसरा, विकास प्रबंधन। इसके अंतर्गत विद्यालयों को प्रोन्नत करने के लिए विकास की व्यवस्था की जाती है। चौथा, वितरण प्रबंधन। विद्यालयी संसाधनों का वितरण किया जाता है। पांचवा, क्रय प्रबंधन। इसके अंतर्गत विद्यालयों में सामान्य क्रम करने का प्रबंध किया जाता है। छठवा, परिवहन प्रबंधन। इसके अंतर्गत विद्यालय में सामान छात्रों, स्टाफ के लिए ले जाने आने की व्यवस्था की जाती है। सातवां, संस्थापक प्रबंधन। इसके अंतर्गत संस्था के भवन, उपकरण, अन्य साधनों का प्रबंधन किया जाता है। आठवां, सेवा वर्गीय प्रबंधन। इसके अंतर्गत शिक्षक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद एवं भूमिका का निर्धारण किया जाता है। नौवां, कार्यालय प्रबंधन। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में आलेख की व्यवस्था करने के लिए कार्यालय होते हैं जिसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के घटक, फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के प्रमुख 5 घटक निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन। दूसरा, प्रशासन। तीसरा, संगठन। चौथा, निर्देशन तथा पांचवा, नियंत्रण। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग। शिक्षा नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को भविष्य के लिए तैयार करती है। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का। हार्नल व स्वार्ज के अनुसार नियोजन विकल्पों का चुनाव है। यह यात्रा से पहले यात्रा मार्ग का निर्धारण है। यह कार्यपालकों एवं उनके संगठन द्वारा संभावित परिणामों की पहचान है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार नियोजन का आशय उन कार्यों की रूपरेखा से है जिनको किया जाना है। प्लानिंग इज टू डिजाइन सम एक्शन टू बी डन बिफोर हैंड, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। फिलिप्स के अनुसार नियोजन का अर्थ साधन एवं साध्य के बीच अग्रिम क्रियान्वयन के निर्धारण से है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस अ पैटर्न ऑफ एक्शन टू बीइंग अबाउट ओवरऑल नेशनल पॉलिसीज बाय द क्लोजेस्ट पॉसिबल आर्टिकुलेरियन ऑफ मींस एंड एंड। फिलिप्स के अनुसार शिक्षा नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। शिक्षा नियोजन की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, नियोजन चिंतन की प्रक्रिया है। दूसरा, यह भावी जीवन हेतु उपलब्ध साधनों के माध्यम से उत्तम विकल्पों का चुनाव है। तीसरा, नियोजन उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न विकल्पों में से एक अथवा अनेक का चुनाव है। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता, कोठारी आयोग 1964 से 1966 ने इस संबंध में लिखा है कि भारत में शैक्षिक नियोजन की समस्या यही है कि शैक्षिक क्षेत्र में एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना है, जबकि संविधान में शिक्षा प्रमुखतः राज्य के अधीन विषय है तथा विभिन्न स्तरों के अनेक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के समस्त पक्षों पर निर्णय दिया जाता रहा है। यह कार्य सहज नहीं है तथा हमारे मार्गदर्शन हेतु वैसा कोई अनुभव नहीं है, इसलिए अधिकांश विषयों में हमें अपनी विधियां सुधारनी होंगी। यह भी आवश्यक सुधार करें। हमारे देश में शिक्षा नियोजन की आवश्यकता अधोलिखित क्षेत्र में है। पहला, शैक्षिक अनुसंधान। दूसरा, परीक्षा में सुधार करना। तीसरा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य सृजन करना। चौथा, सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण तकनीक में सुधार करना। पांचवा, प्रतिभाशाली छात्रों हेतु समृद्धिकरण तथा मंद बुद्धि एवं पिछड़े बालकों हेतु मार्गदर्शन व परामर्श की व्यवस्था करना। छठा, पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री की व्यवस्था करना। सातवां, जनसंपर्क एवं अन्य अधीनस्थ क्षेत्रों का विस्तार करना। शिक्षा नियोजन में अभाव के कारण। योजना आयोग के शैक्षिक कार्यकारी समूह के अनुसार शैक्षिक नियोजन के अभाव के कारणों का उल्लेख किया है। पहला, साधनों एवं नेतृत्व का अभाव होना। दूसरा, आकर्षण व सहयोग का अभाव होना। तीसरा, मूल्यांकन दोषपूर्ण होना। चौथा, राजनीतिक दबाव होना तथा पांचवा, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव होना। शैक्षिक कार्यकारी समूह के मतानुसार शिक्षा की समस्याओं को ध्यान में रखकर विस्तृत शिक्षा योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। योजना निर्णय का कार्य अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस हेतु यह निहितार्थ आवश्यक है कि शिक्षा मंत्रालय एवं योजना आयोग के मध्य सामंजस्य हो। शैक्षिक कार्यकारी दल ने शैक्षिक नियोजन की सफलता हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, शिक्षा की व्यापक योजनाओं का निर्माण किया जाए और योजना बनाते समय उसके लक्ष्य, स्रोतों, साधनों आदि को भी समुचित व्यवस्था की जाए। दूसरा, योजना की प्रक्रिया का आधार विस्तृत होना चाहिए और इसी आधार पर केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। तीसरा, संस्था योजना की सबसे छोटी इकाई है, अतः प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक स्तर को बनाए रखने हेतु संस्थागत योजनाओं का निर्माण किया जाए। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक नियोजन। उत्तर प्रदेश में एकता के आधार पर विस्तृत शिक्षा योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अग्रलिखित आधारों पर विस्तृत एवं संस्थागत शैक्षिक योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। पहला, प्रत्येक विद्यालय अपने विकास हेतु पंचवर्षीय शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करे, जिससे इनके अनुदान पर विचार विमर्श किया जा सके। दूसरा, पंचवर्षीय शिक्षा योजना के संदर्भ में ही निरीक्षण किया जाए। तीसरा, योजनाएं छोटी होनी चाहिए जिसे पूर्ण किया जा सके। चौथा, योजना निर्माण में समस्त संबंधित व्यक्तियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। पांचवा, संस्था के प्रधानाध्यापक विभाग के निर्देशों के अनुसार योजनाओं का निर्माण करें। छठा, शिक्षा विभाग को राज्य की शिक्षा नीतियों के संबंध में इस प्रकार के निर्देशन देने चाहिए जिससे शिक्षा योजना बनाने में सहायता प्राप्त। तीसरा, सहयोग संवाद की स्थापना विद्यालय संगम के माध्यम से की जाए। चौथा, अध्यापक विद्यालय योजनाओं का नेतृत्व करें। पांचवा, विद्यालय द्वारा अपने विकास के साधन स्वयं ही जुटाए जाने चाहिए। छठवा, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अकेडमिक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जाए। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन पर ही शिक्षा का विकास निर्भर करता है। इस संबंध में केसी मुखर्जी ने लिखा है कि शिक्षा कभी समाप्त न होने वाला व्यक्तिगत संतुष्टि का स्रोत है। इसका प्रत्यक्ष संबंध राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास से है। यदि शिक्षा समस्त स्तरों पर योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ की जाती है व राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ इसका संबंध होता है तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति भी तीव्र हो जाती है। ऐसा तभी संभव है जब शैक्षिक योजना स्पष्ट, दूरगामी, व्यापक एवं निष्ठा युक्त हो। शैक्षिक शिक्षा प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है। अतएव शिक्षा के क्षेत्र में संगठन ऑर्गेनाइजेशन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कक्षा भवन, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल, कार्यालय, पाठ्योत्तर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करना और निरंतर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे, कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। सभी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना तथा उनकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करना प्रशासन के कार्यों में ही सम्मिलित है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, उपनिदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इन सभी संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना प्रशासन का ही कार्य है। शिक्षा प्रशासन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ब्रूक एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट मेनी एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म सो ज्वाइंटली दैट दे शैल ऑपरेट एज एन यूनिटी। ब्रूक एडम्स। डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों को मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एज वेल एज विथ ह्यूमन रिलेशनशिप। That is the better working together of people. In fact, it is more concerned with human being and less with inanimate things. Fox 20 तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रियाओं के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। Educational administration is a service activity through which the objectives of the educational process may be effectively realized. शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, शैक्षिक प्रशासन की एक समन्वित प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा, शैक्षिक प्रशासन की एक मानवीय प्रक्रिया है। तीसरा, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील तथा नियंत्रित होती है। चौथा, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण दोनों रूपों में होता है। पांचवा, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील होता है। छठवां, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार तथा विकास लाना होता है। सातवां, शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता पर आधारित होती है। आठवां, व्यवहारिकता होती है। नौवां, शैक्षिक कार्यकर्ताओं का व्यावसायिक विकास करना। दसवां, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग लेना। शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र इस प्रकार है। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की पहचान करना। तीसरा, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा को परिभाषित करना। चौथा, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना। पांचवां, साधनों का उपयोग करना तथा छठवां, समन्वय तथा नियंत्रण करना। मूल्यांकन, शिक्षा प्रशासन उपलब्धियों के रूप में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है। वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे हैं, इससे और भावी प्रगति के लिए उनमें क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं। प्रशासन प्रक्रिया को पृष्ठ पोषण मिलता है। शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन एक संगठन है और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य एवं सामग्री का प्रयोग है। यह उन प्रबंधों का विशेष कार्य है जिनको संगठन में योग्यता प्राप्त है और जो मनुष्यों और सामग्री का उसी निपुणता से प्रयोग करते हैं जिसका इंजीनियर भवन निर्माण में तथा डॉक्टर मनुष्य के रोग को निदान करने में प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखा है जेम्स ने। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन संचालन एवं संगठन का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के अभाव में शिक्षा प्रक्रिया का उचित संचालन करना संभव नहीं है। शैक्षिक प्रशासन का प्रत्यय नवीन होते हुए भी प्रारंभ में ही इसका क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। शिक्षा के अंगों में समन्वय स्थापित करने में, शिक्षालयों की व्यवस्था को नियंत्रित करने में, शिक्षकों की नियुक्ति करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करने के अतिरिक्त विद्यालय वातावरण में मानवीय संबंधों का सार्थक उपयोग करने की दृष्टि से भी विद्यालय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया का सफलतापूर्वक उत्पन्न हो पाना नितांत असंभव ही है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक देश की शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जा रहा है। व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मानव आदि जीवन को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करता आया है। उसने अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए साधनों और स्रोतों का अधिकतम प्रयोग करने का प्रयास किया है। साधनों तथा स्रोतों को समुचित रूप में प्रयोग करने को व्यवस्था कहते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ होता है साधनों एवं स्रोतों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने के स्वरूप को व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख तीन युक्तियों को प्रयुक्त किया जाता है। पहला, प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय स्थापित किया जाता है। दूसरा, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन किया जाता है। तीसरा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह कर क्रम यानी कि हरिचरी में निर्धारित किया जाता है। स्टाफ ने भी व्यवस्था की व्याख्या की है। उनके अनुसार व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य विवाद को कम करना यानी कि टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट है। व्यवस्था के द्वारा उस वस्तु तथा व्यक्ति के महत्व को कम किया जाता है जिससे नियोजन की सफलता में बाधा होती है। इस प्रकार व्यवस्था के द्वारा अनिश्चितता को कम करने, निश्चितता तथा स्थायित्व में वृद्धि की जाती है। व्यवस्था के आधार पर वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में पूर्व कथन दिया जाता है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य योजनाओं तथा अभिक्रमित अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है जिससे सीखने के विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, परंतु इसके द्वारा पाठ्य वस्तु के आंतरिक स्वरूप तथा छात्रों के सीखने के व्यवहार स्वरूपों के संबंध में बहुत कम जानकारी होती है। शैक्षिक तकनीकी में इन्हीं स्वरूपों को समझने पर विशेष बल दिया जाता है। व्यवस्था के प्रत्यय में स्थायित्व, पूर्व कथन तथा स्वरूपों को अधिक महत्व देने से उद्योग तथा प्रबल अधिक प्रभावित हुए हैं। यह विचारधारा शैक्षिक तकनीकी के अर्थ के लिए भी अधिक उपयोगी तथा सार्थक है। शैक्षिक उपलब्धियों के संबंध में पूर्व कथन किया जाता है और सीखने के स्वरूपों के लिए साधनों एवं युक्तियों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व लाती है। व्यवस्था का सीधा संबंध मानव से रहा है, इसलिए मानव प्रकृति की धारणाएं इस प्रत्यय को प्रभावित करती रही हैं। शिक्षा व्यवस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम शैक्षिक प्रशासन की चर्चा करते हैं तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि व्यवस्था के रूप में विवेचन किया जाए। आरंभिक काल में समाज सरल थे, शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक, छात्र तथा स्थान तक सीमित रहता था। कालांतर में समाज के जटिल काम विकसित होने पर काल के अंत संगठनों की भांति शिक्षा के संगठन में भी परिवर्तन आया है। संगठन व्यवस्थित रूप का विकास होता है, मानव शक्ति का सही उपयोग होता है। विद्यालय संगठन का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अर्वाचीन युग में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के कारण क्षेत्र में अनेक नवीन खोज प्रणालियों व प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। विद्यालय संगठन को वर्तमान युग की शैक्षिक आवश्यकता माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विद्यार्थियों, अध्यापकों, शिक्षालयों, शिक्षालय में कार्यरत लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, प्रयोगशाला तथा सहायक सामग्री पर अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है। इन सभी के सदुपयोग हेतु तथा इनमें कार्यरत व्यक्तियों को अपने उत्तरदायित्वों को समझने हेतु विद्यालय संगठन की आवश्यकता होती है। विद्यालय संगठन विद्यालय का दर्पण होता है, क्योंकि जिस विद्यालय का संगठन उत्तम होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। शिक्षार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक सामग्री, विद्यालयी भवन, पाठ्यक्रम आदि समस्त विद्यालयों के अंग होते हैं। अतः श्रम का सही विभाजन करके इन समस्त भागों में मधुर संबंध स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा संगठन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम शैक्षिक प्रशासन की चर्चा करते हैं तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि संगठन के रूप में विवेचन किया जाए। आरंभिक काल में समाज सरल थे, शिक्षा का संगठन शिक्षक, छात्र तथा स्थान तक सीमित रहता था। कालांतर में आज के जटिल काम विकसित होने पर काल के अन्य संगठनों की भांति शिक्षा के संगठन में भी परिवर्तन आया है। संगठन व्यवस्थित रूप का विकास होता है, श्रम का सही उपयोग होता है। विद्यालय संगठन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन स्वयं में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं: परंपराओं का निर्माण करना, दूसरा व्यक्तित्व का विकास करना, तीसरा लचीलापन होना, चौथा समन्वय एवं सहयोग करना, पांचवां शैक्षिक अवसरों की समानता तथा छठवां सृजनात्मकता तथा आदर्शवादिता का होना। विद्यालय संगठन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय संगठन विद्यालय के कार्यकलापों की व्यवस्था है। दृष्टि से विद्यालय संगठन का क्षेत्र इस प्रकार है: पहला, व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना, दूसरा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना, तीसरा समय सारणी तैयार करना, चौथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, पांचवां संस्थागत नियोजन करना, छठवां प्रवेश परीक्षा आदि व्यवस्था करना तथा सातवां विद्यालय व समुदाय में संबंध स्थापित करना। मानव प्रकृति की अवधारणाएं, एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। कुछ समय पूर्व मार्च तथा साइमन 1958 ने औद्योगिक प्रबंध पर कार्य किया और व्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो वास्तव में मानव व्यवहार की धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने तीन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला, व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत, कार्य केंद्रित, क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन, टास्क सेंटर्ड। दूसरा, व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत, संबंध केंद्रित, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप सेंटर्ड। तीसरा, आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत, कार्य तथा संबंध केंद्रित, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर्ड उपरोक्त बिंदुओं का विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। पहला, व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत यानी कि कार्य केंद्रित क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन टास्क सेंटर्ड। इस सिद्धांत की यह अवधारणा है कि व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की क्षमता होती है और निर्देशों को स्वीकार करके वे उनका अनुसरण कर सकते हैं, परंतु उनमें कार्य के लिए स्वोपक्रम की क्षमता नहीं होती और न ही कार्य प्रणाली को किसी प्रकार प्रभावित करने की क्षमता होती है। सदस्य प्राथमिकता के रूप से मशीन के समान कार्य करते हैं। प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत ने शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावित किया है। शिक्षक छात्रों को समस्त क्रियाओं को प्रेरणा देना, नियंत्रण करना, छात्रों के व्यवहार में सुधार लाना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति कराना आदि को नियंत्रित करता है। छात्र केवल एक स्रोत का कार्य करते हैं और शिक्षक निर्देशों का अनुसरण करते हैं। कक्षा में बोलने तथा लिखने पर ही अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण व्यवस्था कार्य केंद्रित तथा शिक्षक नियंत्रित होते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। छात्र की रुचियों, क्षमताओं तथा अभिवृत्तियों को शिक्षा व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। छात्र केवल मशीन के समान कार्य करता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में छात्रों को रटना अधिक पड़ता है। इसमें स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल शिक्षण को ही अपनाया जाता है, जिससे केवल निम्न स्तरीय ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। भावात्मक पक्षों के विकास को महत्व नहीं दिया जाता है। मानव व्यवहार की धारणा की सीमाओं के अध्ययन से यह अनुभव किया गया है कि व्यवस्था मानव के हितों के लिए नहीं की जाती है, अतः व्यवस्था के सदस्यों की भावनाओं और संबंधों को भी महत्व देना चाहिए। दूसरा, व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत संबंध केंद्रित ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिलेशनशिप सेंटर्ड। मानव संबंध सिद्धांत की यह अवधारणा है कि व्यवस्था के संदर्भ सदस्य अपनी अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, मूल्यों तथा लक्ष्यों को लेकर आते हैं। इसलिए व्यवस्था के व्यवहारों के लिए उन्हें प्रेरित करना तथा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उनके लक्ष्यों तथा व्यवस्था के लक्ष्यों में अंतर होता है। व्यवस्था व्यवहार के वास्तविक लक्ष्य के लिए अभिवृत्ति तथा नैतिक व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण होती है। आज की शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली मानव संबंध सिद्धांत से अधिक प्रभावित है। परंपरागत कार्य केंद्रित सिद्धांत के विरोध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। परंपरागत शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था के द्वारा छात्रों की मानसिक क्षमताओं का विकास समान स्तर पर ही किया जा सकता है, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जो छात्रों की आयु, प्रवीणता, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा योग्यताओं के अनुरूप होती है, जिससे छात्रों का विकास बहुमुखी होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षक का उत्तरदायित्व एवं निर्देशक तथा परामर्शदाता के रूप में होता है। उसका कर्तव्य छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए अवसर देना तथा प्रोत्साहित करना है। इस शिक्षण व्यवस्था के आयाम में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्रों को अधिक कार्य करना पड़ता है। सामूहिक शिक्षण तथा सीखने की व्यवस्था सहायक सामग्री को अधिक प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। सीखने में व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। सीखने की पाठ्य वस्तु की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सीखना रुचिकर हो, प्रेरणादायक हो तथा अंततः सफलता प्राप्त हो सके। इसमें रटने पर कम से कम बल दिया है। सार्थक अधिगम को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिगम में सार्थक कार्यों को ही प्रधानता दी जाती है, जैसे खेल कूद, प्रोजेक्ट का कार्य, खोज आदि। परंपरागत तथा मानव संबंध व्यवस्था के सिद्धांत विरोधी विचारधारा पर आधारित एक अन्य सिद्धांत है जो इन दोनों का समन्वय है और मानव की प्रकृति पर आधारित है। तीसरा, आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत कार्य तथा संबंध केंद्रित मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर्ड। इस सिद्धांत की यह धारणा है कि व्यवस्था के सदस्य समस्या का समाधान कर सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। व्यवस्था के व्यवहार की व्यवस्था प्रत्यक्षीकरण तथा चिंतन प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। मानव व्यवहार की प्रकृति पर आधारित होने से इन तीनों सिद्धांतों में कोई विरोधाभास नहीं है, परंतु सिद्धांतों में लक्ष्यों का अंतर अवश्य है। इस सिद्धांत पर प्रतिपादन औद्योगिक प्रबंध की दृष्टि से किया गया है, परंतु इन्हें शिक्षण व्यवस्था में भी प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक व्यवस्था आयाम मॉडर्न अप्रोच में कार्य तथा मानव संबंध को भी सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित होती है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण में कार्य की आवश्यकताओं तथा छात्र की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक छात्र कार्य तथा व्यवस्था चरों में समन्वय स्थापित करता है, जिसका परिणाम छात्रों की निष्पत्ति होती है। इस प्रत्यय को पिछले चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस विचारधारा का संबंध स्वतंत्र अध्ययन अनुदेशन प्रणाली, अनुदेशन प्रारूप तथा अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से है। डेविज के अनुसार इसे शैक्षिक तकनीकी का एक पक्ष माना जाता है, जिसे तृतीय शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसमें प्रणाली आयाम सिस्टम अप्रोच का प्रयोग प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। संगठन के स्वरूप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक संगठन दो प्रत्ययों का मिश्रण होता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक संगठन की स्थापना कतिपय लक्ष्य व उद्देश्यों को लेकर होती है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप संगठन के विविध स्तरों का निर्माण किया जाता है और उन स्तरों पर स्तरानुसार ऊपर से नीचे विभिन्न पद सोपानों पर भिन्न भिन्न आकृतियों के अधिकाधिक पर्यवेक्षण व मूल्यांकन का अधिकार होता है। ये अधिकृतियाँ स्वीकृत नीतियों और नियमों के आधार पर प्रदत्त कार्यों का संपादन करती हैं, परंतु जब संगठन का विस्तार होता है तदनुसार अनेक नए पद सोपान भी सृजित हो जाते हैं, तब प्रशासनिक जटिलताएं भी बढ़ती हैं। प्रवृत्तियों के संचालन के लिए आवश्यक संप्रेषण समन्वय व नियंत्रण की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इस संबंध में ओडरवे टीड का कथन यहाँ उद्धृत करना भी समीचीन है, अर्थात जैसे जैसे संगठन का विस्तार गणितीय आकार में बढ़ता जाता है, प्रशासनिक समस्याओं का गुणता ज्यामितिक आकार में बढ़ती जाती है। As organization increases in arithmetic size, their difficulties of administrative chosen grow in geometric proportion. शिक्षा निर्देशन का या पर्यवेक्षण educational supervision and guidance. पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा की सुपरविजन शब्द का पर्याय है। पर्यवेक्षण दो शब्दों परि यानी कि सुपर प्लस अविच्छेण यानी कि विजन से मिलकर बना है। सुपर का अर्थ असाधारण अलौकिक अथवा दिव्य होता है तथा विजन का अर्थ दृष्टि अर्थात ऐसी दृष्टि जो दिव्य अथवा अत्यंत सूक्ष्म हो। यह पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती है। कुछ विद्वानों ने इसको पर्यवेक्षण भी कहा है, जिसका अर्थ चारों ओर देखना है, किसी संस्था के चहुमुखी दिशाओं का ध्यान पूर्वक अवलोकन करना तथा विकास के लिए सुझाव देना ही पर्यवेक्षण कहा जाता है। अतएव पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें उचित निर्देशन भी प्रदान करना है। जॉन ए बार्टकी के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की उन्नति तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंध होता है। गुड सुपरविजन इज ऑलवेज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, द ग्रोथ ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जॉन ए बर्टकी। ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, प्राचार्य एवं छात्र तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। शिक्षकों की उत्तम विधि, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधा, क्रीड़ा क्षेत्र की सुव्यवस्था, प्राचार्य का निरीक्षण आदि सभी कार्यों का उद्देश्य शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की सर्वांगीण उन्नति में सहायक होता है। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापकों एवं शिक्षा अधिकारी जब अपने सुझावों द्वारा शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि का स्तर उन्नत करने के लिए कार्य करते हैं, तब ये पर्यवेक्षण की भूमिका निभाते हैं। अतएव शैक्षिक पर्यवेक्षण का शिक्षकों, सीखने की परिस्थितियों तथा छात्रों की उन्नति से गहरा संबंध होता है। छात्र अध्ययन की क्रिया में किस प्रकार प्रगतिशील हों, शिक्षक नवीनतम शिक्षण सामग्री का किस प्रकार प्रयोग जुटाया जाए आदि अनेक लाभकारी कार्यों की शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत योजना बनाई जाती है एवं इनकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। सारांश यह है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में शिक्षण संस्था की निरंतर उन्नति तथा छात्रों की सर्वांगीण उन्नति में पूर्ण सहायक होती है। अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन NEA के प्राथमिक स्कूल के प्राचार्यों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ निम्न प्रकार स्पष्ट किए हैं। पहला, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों के शिक्षण में सुधार, छात्रों को समझने, शिक्षण सामग्री का विकास करने में सहायक होता है। दूसरा, इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार तथा निर्माण के लिए शोध पर बल दिया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षण की कुशलता तथा छात्रों की आवश्यकता के ज्ञान हेतु सीखने की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, इसके द्वारा शिक्षकों को व्यावसायिक नेतृत्व एवं सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा कोष डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन इसके अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ विद्यालय संबंधी इस प्रकार है। पहला, शिक्षण उद्देश्यों, विधियों एवं सामग्री का चयन करना। दूसरा, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करना। तीसरा, इसके विकास तथा व्यावसायिक उन्नति के लिए प्रेरणा देना तथा चौथा, सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना। शिक्षा पर्यवेक्षण की परिभाषाएं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शिक्षा पर्यवेक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एडम्स तथा डिक्के के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। एजुकेशनल सुपरविजन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। बार बर्टन तथा ब्रेकनर के अनुसार पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन अवस्थाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होता है जो सीखने तथा छात्रों के विकास के चारों ओर व्याप्त होती है। द टर्म सुपरविजन इज ओनली यूज्ड व्हेन अ प्रिंसिपल हेडमास्टर आर अ सीनियर टीचर ऑफ अ स्कूल सुपरविजन्स द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स टू गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। W. किम्बाल के अनुसार पर्यवेक्षण एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है। सुपरविजन इज अ असिस्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। चेस्टर टी मैकनव के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने तथा निर्देशन देने की एक विधि है। पर्यवेक्षण का अंतिम उद्देश्य छात्रों को उत्तम शिक्षण सेवा द्वारा सभी स्तरों के योग्य बनाना होना चाहिए। सुपरविजन इज अ प्रोसीजर ऑफ गिविंग डायरेक्शन एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। द एंडिंग रिजल्ट ऑफ ऑल सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड स्टूडेंट एट ऑल लेवल विद बेटर एजुकेशनल सर्विसेज। फ्रेड सी अय्यर के अनुसार पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। सुपरविजन इज द मोस्ट नोवेल एंड डायनामिक ऑफ ऑल एजुकेशनल एंडेवर। इट इज द मोस्ट नोवेल बिकॉज इट इज द मोस्ट क्रिएटिव। माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशनल कमीशन रिपोर्ट 1953 के अनुसार हमारी दृष्टि में निरीक्षण की वास्तविक भूमिका, जिसे हम शैक्षिक परामर्शदाता कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, प्रत्येक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना है तथा इसके समस्त कार्यों के विषय में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की सहायता भी इस प्रकार करना है जिससे वे परामर्शदाता के परामर्श तथा संस्तुतियों को मान सकें। इन आवर व्यू द ट्रू रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर फॉर हुम वी शुड प्रीफर द टर्म एजुकेशनल एडवाइजर इज टू स्टडी द फंक्शंस एंड टू हेल्प द टीचर टू कैरी आउट हिज एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। शैक्षिक पर्यवेक्षण की उपयुक्त सभी परिभाषाओं में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षकों की क्षमताओं को विकसित करना, सीखने की दशाओं का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना आदि का समावेश है। वास्तव में शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्तम शैक्षिक पर्यवेक्षण वही है जो शिक्षक को छात्रों तथा विद्यालय की समस्त परिस्थितियों को उन्नत करता है। सारांश रूप में शैक्षिक पर्यवेक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों को कार्य कुशलता तथा व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करती है, पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षण स्तर को ऊंचा करती है तथा छात्रों को समाज में उपयुक्त आचरण करने का प्रशिक्षण देती है। शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। आधुनिक पर्यवेक्षण द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों को व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास किया जाता है। आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं जनतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। दूसरा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक है। तीसरा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक तकनीकी सेवा है। चौथा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। पांचवा, इसके द्वारा वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय पर्यवेक्षण पर बल एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटिव सुपरविजन दिया जाता है। छठा, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय विद्यालय अंतःक्रिया का गत्यात्मक यानी कि डायनामिक रूप है। सातवां, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय योजनाबद्ध पर्यवेक्षण यानी कि एम्फेसिस ऑन प्लान्ड सुपरविजन पर बल देता है। तथा आठवां, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड प्रदान करता है। शैक्षिक नियंत्रण, एजुकेशनल कंट्रोल, यह प्रबंधन का अंतिम अंग होता है। नियंत्रण का आधार पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन तथा मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन होता है। किसी भी संस्था में जितनी गतिविधियां चलती हैं, उन्नति के लिए जितने कार्य किए जाते हैं तथा संगठन में जितने व्यक्ति रखे जाते हैं, उनकी बुराई भलाई तथा उनकी कार्य क्षमता या मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। व्यक्तियों को उचित निर्देशन भी मूल्यांकन के पश्चात ही दिया जा सकता है तथा दुर्बलताओं का ज्ञान करने के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तकें, निर्देशन सामग्री, पाठ्योत्तर क्रियाएं आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण संस्था की उन्नति में जो क्रिया सहायक एवं उपयोगी है, केवल उसे ही प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के अनुचित तथा उच्छक श्रृंखल व्यवहार को रोका जा सकता है। कौन व्यक्ति किस सीमा तक अधिकारों का प्रयोग करेगा, वास्तव में इसका निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता है। इस संबंध में सियर्स का भी कथन है, कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले, तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन नहीं दे सकता। सियर्स का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी संस्था का संचालन करने में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है, उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही संबंध होता है। अधिगम अभ्यास, लर्निंग एक्सरसाइज। पहला, शिक्षा प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं एवं क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। दूसरा, शिक्षा संगठन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, विद्यालय संगठन की विशेषताएं एवं क्षेत्र बताइए। तीसरा, मानवीय संगठन की अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, भारतीय विद्यालय संगठन की अवधारणा का विवेचन भी कीजिए। चौथा, शिक्षा प्रशासन का अर्थ बताइए, शिक्षा प्रबंधन तथा शिक्षा प्रशासन में अंतर बताइए। पांचवा, शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं एवं क्षेत्र का उल्लेख भी कीजिए। छठवां, शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं एवं क्षेत्र को भी बताइए। सातवां, शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला, शिक्षा प्रबंधन की एक परिभाषा दीजिए तथा पांच प्रमुख विशेषताओं को बताइए। दूसरा, शिक्षा संगठन का अर्थ बताइए तथा विद्यालय संगठन का क्षेत्र बताइए। तीसरा, शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा पांच प्रमुख विशेषताओं को बताइए। चौथा, शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं को बताइए। पांचवा, शिक्षा नियोजन की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यकता बताइए। सत्य असत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। पहला, प्रबंध वह है जो कुशल प्रबंधक करता है, सत्य और या असत्य। दूसरा, प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान तथा कला है, सत्य है या असत्य है। तीसरा, विद्यालय संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, सत्य है या असत्य है। शिक्षा प्रशासन लक्ष्य कार्यकर्ताओं का व्यावसायिक विकास करता है, सत्य है या असत्य है। पांचवा, शिक्षा पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में कोई अंतर नहीं है, सत्य है या असत्य है। छठा, शिक्षा नियोजन का लक्ष्य अनेक विकल्पों में से उत्तम विकल्प का चयन करना है, सत्य है या असत्य है। कुंजी, पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए असत्य, छठवें के लिए सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला, शिक्षा के कार्यकर्ताओं का व्यावसायिक विकास रिक्त स्थान में होता है। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन रिक्त स्थान है। तीसरा, एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। शिक्षा के विविध विकल्पों में से उत्तम विकल्प का चयन रिक्त स्थान में किया जाता है। पांचवा, शिक्षा पर्यवेक्षण का आधुनिक स्वरूप रिक्त स्थान है। छठा, शिक्षा निरीक्षण का आयोजन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। कुंजी, पहले के लिए प्रबंधन, दूसरे के लिए विद्यालय संगठन, तीसरे के लिए प्रबंधन, चौथे के लिए शिक्षा नियोजन, पांचवें के लिए प्रजातांत्रिक, छठवें के लिए शिक्षा विभाग। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है अ, नियोजन करना, ब, व्यवस्था करना, स, प्रशासन करना, द, उपरोक्त सभी। दूसरा, नियंत्रण तथा नियुक्तियां करना क्षेत्र है अ, प्रशासन का, ब, व्यवस्था का, स, नियोजन का, द, प्रबंधन का। तीसरा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है अ, शिक्षा प्रबंधन का, ब, शिक्षा नियोजन, स, शिक्षा संगठन, द, शिक्षा प्रशासन। चौथा, विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है समय सारणी बनाना, ब, शिक्षा नियोजन, स, प्रवेश परीक्षा देना, द, उपरोक्त सभी। पांचवा, शिक्षा प्रशासन की मुख्य प्रक्रिया है अ, निर्देशन देना, ब, बजट बनाना, स, नियुक्तियां करना, द, उपरोक्त सभी। छठा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है अ, प्रबंधन का, ब, विद्यालय संगठन, स, नियोजन का, द, शिक्षा प्रशासन। सातवां, प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है अ, प्राचार्य की, ब, प्रबंधक की, स, शिक्षकों की, द, उपरोक्त सभी। कुंजी, पहले के लिए द, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए स, चौथे के लिए द, पांचवें के लिए द, छठवें के लिए ब, सातवें के लिए द।